एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में चल रहे हैं जो 1992 में लिखी गई थी, पर ऐसा लगता है जैसे वो हमारा आज देख रही थी।
हाँ, नील स्टीफनसन की स्नो क्रैश।
बिल्कुल, मतलब जब भी हम मेटावर्स, अवतार या वायरल इन्फॉर्मेशन जैसे शब्द सुनते हैं
तो हम असल में स्टीफनसन की ही दुनिया की बात कर रहे होते हैं। कमाल है ना, ये सब उन्होंने तब सोचा जब इंटरनेट भी ज्यादातर लोगों के लिए एक नई चीज थी।
हाँ, और इसे अक्सर पोस्ट साइबरपंक कहा जाता है। तो साइबरपंक तो हम समझते हैं वो ब्लेड रनर जैसी अंधेरी निराशा वाली दुनिया, ये पोस्ट साइबरपंक क्या है?
ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, क्लासिक साइबरपंक जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा निराशावादी है। मतलब तकनीक जीत गई, इंसान हार गया।
हाँ, सब कुछ बहुत अंधेरा और भारी भरकम सा लगता है।
सही बात है, लेकिन स्नो क्रैश में एक ऊर्जा है, एक व्यंग्य है। दुनिया यहाँ भी पूरी तरह से अराजक है, सरकारें खत्म हो चुकी हैं,
अच्छा,
लेकिन जो हमारे किरदार हैं वो इस टूटे फूटे सिस्टम में बस जी नहीं रहे हैं, वो उसमें अपना रास्ता बना रहे हैं, उसे मात दे रहे हैं। इसमें एक तरह की मस्ती है।
तो चलिए इसी ऊर्जा से भरी दुनिया को थोड़ा और समझते हैं। कहानी की दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, सही कहा मैंने?
जी हाँ, बिल्कुल। एक है असली दुनिया, जिसे द स्ट्रीट कहा गया है। ये निकट भविष्य का अमेरिका है, जो जो पूरी तरह बिखर चुका है।
मतलब कोई सरकार नहीं,
कोई संघीय सरकार नहीं, देश छोटे छोटे कॉर्पोरेट शहरों में बट गया है। हर चीज प्राइवेट है, सड़कें, पुलिस, यहाँ तक कि पिज्जा डिलीवरी भी माफिया चलाता है।
पिज्जा डिलीवरी माफिया चलाता है?
हाँ, और आपकी पहचान आपके देश से नहीं बल्कि इस बात से है कि आप किस ब्रांड के वफादार हैं।
वाओ, और इस हकीकत के साथ साथ एक वर्चुअल दुनिया भी है, मेटावर्स।
बिल्कुल, मेटावर्स एक 3D वर्चुअल स्पेस है जहां लोग अपने बनाए हुए अवतार के रूप में मिलते हैं। ये आज के सोशल मीडिया और गेमिंग का बहुत ही एडवांस्ड रूप है।
तो वहां आपकी हैसियत कैसे तय होती है?
इस बात से कि आपका अवतार कितना शानदार है और मेटावर्स की किन खास जगहों तक आपकी पहुंच है। कुछ लोगों के लिए तो मेटावर्स असली दुनिया से भी ज्यादा असली है।
तो एक तरफ ये कॉर्पोरेट अराजकता और दूसरी तरफ एक चमकदार वर्चुअल दुनिया, कहानी में फिर चिंगारी कहां से लगती है?
वो चिंगारी है स्नो क्रैश।
स्नो क्रैश?
हाँ, और ये कोई आम ड्रग नहीं है, ये एक न्यूरोलिंग्विस्टिक वायरस है।
न्यूरोलिंग्विस्टिक
मतलब भाषा और दिमाग से जुड़ा हुआ।
बिल्कुल,
मेटावर्स में ये एक डिजिटल फाइल की तरह है। अगर कोई अवतार उसे देख ले तो वो तुरंत क्रैश हो जाता है, और असली दुनिया में उसे चलाने वाला इंसान दिमागी तौर पर खत्म।
बाप रे, मतलब ये तो सीधे किसी के दिमाग को हैक करने जैसा है।
हाँ,
आपके ब्रेन और सॉफ्टवेयर ही बदल दिया।
बिल्कुल सही। और इससे भी डरावनी बात यह है कि इस डिजिटल वायरस का एक असली फिजिकल वर्जन भी है जो खून के जरिए फैलता है।
अच्छा,
तो उपन्यास का जो मुख्य संघर्ष है वो इसी दिमागी महामारी को समझने और उसे रोकने की एक दौड़ है। ये इंसान के दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को बचाने की लड़ाई है।
और इस लड़ाई के बीच में है हमारा हीरो, जिसका नाम ही है हीरो, प्रोटैगोनिस्ट।
हाँ, नाम में ही व्यंग्य है।
हीरो वाला नाम और काम?
काम पिज्जा डिलीवरी का। वो एक जीनियस हैकर है, दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज है, जिसने मेटावर्स बनाने में मदद की थी, पर आज वो माफिया के लिए द डिलीवरेटर बनकर रह गया है।
ये तो आज की गिग इकोनॉमी पर एक सीधी टिप्पणी लगती है, एक जीनियस जिसकी स्किल्स की कोई कदर नहीं।
बिल्कुल, वो अतीत में फंसा हुआ है और फिर उसकी मुलाकात होती है वाईटी से।
वाईटी?
योर्स ट्रूली। वो 15 साल की एक कुरियर है और वो इस उपन्यास की धड़कन है। वो अपने हाईटेक स्केटबोर्ड पर तूफानी रफ्तार से पैकेट डिलीवर करती है।
मतलब वो इस नई दुनिया का हिस्सा है, वो इसमें पली बड़ी है।
हाँ, वो बेहद स्वतंत्र, होशियार और निडर है। जहाँ हीरो अपनी जगह ढूंढ रहा है, वहीं वाईटी इस दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाती है। वो भविष्य है।
और इन दोनों की मुलाकात भी एक पिज्जा डिलीवरी के दौरान ही होती है ना?
जी, एक असफल पिज्जा डिलीवरी के बाद, और वहीं से कहानी रफ्तार पकड़ती है।
तो स्नो क्रैश का पता कैसे चलता है?
हीरो मेटावर्स के क्लब में है, द ब्लैक सन, जब वो अपने दोस्त को स्नो क्रैश से संक्रमित होते हुए देखता है। एक अजनबी उसे एक डिजिटल फाइल देता है और उसे देखते ही उसका अवतार टूटकर बिखर जाता है
और असली दुनिया में वो
दिमागी तौर पर खत्म हो जाता है। बस इस घटना के बाद हीरो इसकी तहकीकात में जुट जाता है।
और यहीं से कहानी सिर्फ एक थ्रिलर नहीं रहती, वो और भी गहरी हो जाती है ना।
हाँ, क्योंकि हीरो मदद लेता है द लाइब्रेरियन नाम के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम से, और वो उसे प्राचीन सुमेरियन पौराणिक कथाओं तक ले जाता है।
सुमेरियन कथाएं, मतलब हजारों साल पुरानी?
बिल्कुल। लाइब्रेरियन बताता है कि टावर ऑफ बैबल की कहानी कोई मिथक नहीं थी, वो असल में हुई थी।
क्या मतलब, जहां भगवान ने इंसानों की भाषाएं अलग अलग कर दी थी?
हाँ, प्राचीन काल में देवी अशेरा का एक वायरस था, एक नाम शुभ। ये एक मंत्र की तरह था जो लोगों के दिमाग को नियंत्रित कर उन्हें एक सामूहिक चेतना में बांध देता था।
एक तरह का दिमागी हाइव माइंड।
सही पकड़ा। और देवता एनकी ने मानवता को इस गुलामी से बचाने के लिए एक न्यूरोलिंग्विस्टिक हैक किया। उसने एक काउंटर वायरस बनाया जिसने लोगों के दिमाग को रीबूट कर दिया, जिससे दुनिया में अलग अलग भाषाएं पैदा हुई।
कमाल है। तो बैबल का अभिशाप असल में इंसानियत को बचाने का एक तरीका था,
ताकि कोई एक विचार या वायरस सबके दिमाग पर कब्जा न कर सके।
और अब कहानी का विलन जाहिर है इसी पुराने वायरस को वापस लाना चाहता होगा।
बिल्कुल। इस साजिश के पीछे है मीडिया मुगल एल बॉब राइफ। उसने अशेरा के उसी प्राचीन वायरस को स्नो क्रैश के रूप में फिर से बना लिया है।
और उसका मकसद?
बैबल के अभिशाप को खत्म करना, एक ऐसी दुनिया बनाना जहां हर कोई एक ही भाषा सोचे और उसके आदेशों का पालन करे। वो दिमागों के बाजार पर कब्जा करना चाहता है।
और इस बौद्धिक खतरे को असल दुनिया में लाने के लिए उसका एक हथियार भी है, रेवन।
हाँ, रेवन वो राइफ की शक्ति का क्रूर भौतिक रूप है, एक विशाल और भयानक योद्धा।
वो सिर्फ एक गुंडा तो नहीं है, उसमें कुछ और भी है।
उसके शरीर में एक हाइड्रोजन बम लगा है जो उसके दिल की धड़कन से जुड़ा है।
क्या कह रहे हैं?
अगर उसका दिल रुका तो बम फट जाएगा। ये उसे लगभग अजेय बना देता है।
तो अब सारे मोहरे अपनी अपनी जगह पर हैं। कहानी के अंत में ये सब कैसे जुड़ता है?
चरमोत्कर्ष तब आता है जब राइफ अपने बेस द राफ्ट से वायरस को दुनिया भर में फैलाने की तैयारी करता है। द राफ्ट असल में शरणार्थियों से भरा एक विशाल जहाजी बेड़ा है।
और उसकी योजना क्या है?
मेटावर्स में एक बहुत बड़े वर्चुअल कॉन्सर्ट के दौरान लाखों लोगों को संक्रमित करना, और साथ ही असली दुनिया में अपने धार्मिक पंथ के जरिए संक्रमित खून बांटना।
तो मतलब लड़ाई दो मोर्चों पर लड़ी जाएगी, एक वर्चुअल एक असली।
बिल्कुल। मेटावर्स में हीरो एक काउंटर वायरस प्रोग्राम के साथ रेवन के अवतार से एक शानदार तलवारबाजी करता है।
लेकिन ये सिर्फ तलवारों की लड़ाई नहीं होगी, ये कोड की भी लड़ाई होगी।
हाँ, हीरो अपनी कोडिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके रेवन के अवतार को सचमुच टुकड़ों में तोड़ देता है, उसे डिजिटल रूप से मिटा देता है।
और उसी वक्त असली दुनिया में वाइटी क्या कर रही है?
वाइटी और माफिया राइफ के एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला करते हैं, और वाइटी अपनी चतुराई और स्केटबोर्डिंग का इस्तेमाल करते हुए सीधे राइफ का सामना करती है।
और फिर असली रेवन से भी सामना होता होगा।
हाँ, और वो अपनी हिम्मत और सूझबूझ से रेवन को बिना मारे उसे निष्क्रिय कर देती है। वो परमाणु विस्फोट को टाल देती है। ये दिमाग की जीत है, ताकत की नहीं।
तो अंत में राइफ की योजना नाकाम हो जाती है।
हाँ, हीरो को अपना मकसद वापस मिल जाता है, और वाइटी इस नई दुनिया में अपनी एक मजबूत जगह बना लेती है।
तो जब हम इस पूरी कहानी को देखते हैं, ये किताब आज भी इतनी प्रासंगिक क्यों है 30 साल बाद भी?
मेरे ख्याल से इसका सबसे बड़ा कारण है वो विचार कि भाषा एक वायरस है। उपन्यास बताता है कि भाषा सिर्फ बात करने का जरिया नहीं है, वो कोड है जो हमारी सोच को बनाता है।
और जैसे सॉफ्टवेयर में वायरस आ सकता है, वैसे ही हमारे दिमाग में भी आ सकता है।
बिल्कुल। आज हम वायरल आइडियाज और मीम्स की दुनिया में जी रहे हैं। स्नो क्रैश ने इस हकीकत को बहुत पहले ही देख लिया था।
ये वास्तविकता की प्रकृति पर भी सवाल उठाता है। जब हमारे अनुभव और रिश्ते वर्चुअल हो सकते हैं, तो फिर असली क्या है?
और कॉर्पोरेट संप्रभुत्वता की जो तस्वीर है, वो तो आज और भी सच लगती है। एक ऐसी दुनिया जहां देश नहीं बल्कि ब्रांड की वफादारी मायने रखती है।
सच में ऐसा लगता है जैसे स्टीवनसन ने 1992 में ही हमारा आज देख लिया था।
यह उपन्यास सिखाता है कि तकनीक हमारी पुरानी मानवीय जरूरतों जैसे विश्वास और कहानी को मिटा नहीं देती, बस उन्हें एक नया रूप दे देती है।
और ये हमें याद दिलाता है कि जानकारी और संक्रमण के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।